मैं खुश नसीब हूँ। किस्त नंबर 5। सर में शदीद तकलीफ दे दर्द ने शमसा को होश दिलाया। कितनी देर तक वो सर पकड़कर बैठी रही, लगता था सर फट गया है। वो दर्द से गिराह रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास काम करने लगे। उसको क्या हुआ था? बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। ये कौन सी जगह है? समझ नहीं आ रहा था। एक छोटा सा कमरा था, डबल बेड पर वो पड़ी हुई थी। उसका फिरोजी दुपट्टा बेड के ऊपर उसके पास ही पड़ा हुआ था। कमरे के कोने में एक टेबल और चेयर पड़ी थी। कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा था, वो भी बंद था। शमसा बहुत देर तक साकत इधर उधर तकती रही। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, वो कहाँ है। सर में एक बार फिर शदीद दर्द शुरू हो गया और वह नीम बेहोश होकर वहीं गिर गई। पता नहीं कितने पल गुजर गए, कितना वक्त हुआ कि शमसा को फिर होश आया। सर के दर्द के साथ साथ उसको उसका खल्क भी तकलीफ दे रहा था। बाहर क्या है और वो कहाँ है, कुछ पता नहीं। शमसा बमुश्किल उठी। थोड़े फासले पर टेबल पर पानी की बोतल थी, मगर शमसा को लग रहा था वो बहुत दूर पड़ी हुई है। शमसा ने बहुत हिम्मत करके ये तवील फासला तय किया और पानी की बोतल पकड़ी, ढक्कन खोलकर पानी पिया और कुर्सी पर बैठ गई। सर की दर्द बदस्तूर जारी थी। सर को दोनों हाथों से पकड़कर वह कितनी ही देर बैठी रही, उसको कुछ पता नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको होश आना शुरू हो गया कि क्या हुआ था। वो हॉस्टल में थी, रहील इससे मिलने आया और उसको गाड़ी दिखाने के लिए बाहर लेकर गया और इसरार करके गाड़ी में बिठाकर काफ़ी दूर ले गया। जब वो वापस जाने लगे तो अचानक ऐसे लगा जैसे किसी ने पीछे से कोई बम मार दिया हो। वो अपनी सीट से उछलकर फ्रंट स्क्रीन से टकराई। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं, मगर अब यहाँ वो किस तरह पहुंची उसको नहीं पता। कौन उसको यहाँ लेके आया? ये हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा। फिर ये कौन सी जगह है? रहील कहाँ है? मेरे साथ वो था, उसका अब क्या हाल है? वो इस वक्त कहाँ है? शमसा ने परेशान होकर पुकारा, कोई है? मगर उसकी इस कदर और आहिस्ता आवाज थी कि वह मुश्किल उसको सुनाई दी। शमसा ने पूरी ताकत इकट्ठी की और दरवाजे तक पहुंची और दरवाजे पर दस्तक देने लगी, कोई है, मुझे बाहर निकालो। मगर हाथों की दस्तक भी आवाज की तरह बेबस और कमजोर थी। शमसा फिर निढाल होकर वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। वो नीम बेहोशी की कैफियत में थी और माहौल में खामोशी का राज था। उसको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। वो होश में है, ये हकीकत है, कोई ख्वाब है? इम्तहान के दिनों में जब वो बहुत देर तक पढ़ती रहती तो कभी कभी बहुत थक कर कुर्सी पर टेक लगाती, तो नींद और थकन के बायस कितनी देर तक शायद वो सो जाती या बेखबर हो जाती थी। तब कभी कभी अजीब से ख्वाब नजर आते थे जो जहन के पता नहीं किस किस्से में क्या क्या दिखाते थे, और फिर उठने के बाद कुछ देर तक उसको लगता कि वो ख्वाब में ही थी। अब भी वो शायद उसी तरह की किसी कैफियत का शिकार थी। शमसा को लगा जैसे किसी ने दरवाजे को खोला हो और धक्का लगाया हो। कोई जोर से धक्का लगाकर अंदर दाखिल हुआ था कि वो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठी हुई थी। जब दरवाजा खुला तो उसको धक्का लगा, वो आगे की तरफ गिर गई। पता नहीं कौन था, कोई नरम नरम हाथों से उसको उठाकर बेड पर डाल रहा था। उसके सफेद लिबास को देखकर शमसा को लगा शायद वो कोई फरिश्ता है या कोई नर्स है, उसने दिल में सोचा। हाँ, वो कोई नर्स ही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी और बहुत मेहरबान थी। उसने शमसा को कोई इंजेक्शन लगाया, उसको सुई की हल्की सी चुभन हुई। शमसा ने मुस्कुराकर बेख्याली से उसको देखा। फिर जहन में धुंध छा गई। पता नहीं कब फिर उसकी आंख खुली। वही कमरा, उसी तरह नर्म उजाला, छत पर लगे हुए फुल पावर लाइट बल्ब से कमरे में फैला हुआ रोशनी। शमसा को बेहद थकन महसूस हो रही थी। कुछ याद नहीं आ रहा था, कुछ होश नहीं था, नींद बेहोशी की हालत थी। पता नहीं कब फिर उसकी आंख खुली। वही कमरा था, उसी तरह नरम उजाला, छत पर लगे हुए फुल पावर लाइट बल्ब से हो रहा था। शमसा को बेहद थकन महसूस हो रही थी। कुछ याद नहीं आ रहा था, कुछ होश नहीं था, नींद बेहोशी की सी कैफियत थी। और फिर वो उसी धुंध में गुम हो गई। शमसा, शमसा, कोई बहुत दूर से आवाजें दे रहा था। फिर लगता था बहुत सी आवाजें हैं। कुछ आवाजें कितनी अपनी अपनी लग रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था बहुत से लोग उसको बहुत दूर से बुला रहे हैं। वो उन आवाजों का जवाब देना चाहती थी, मगर चारों तरफ बहुत धुआं था। लगता था वो आसमान पर है और बादल ही बादल हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर कभी कभी कुछ सुनाई दे रहा था। कोई बहुत प्यार से इसके माथे को चूमकर कह रहा था, शमसा उठ जाओ, शमसा तुम ठीक हो ना, शमसा कुछ तो बोलो। लगता था वो आवाज भर आती है, आवाज में आंसू की अमेजिश हो जाती और शमसा फिर बेखबर हो जाती। फिर उसे लगा उसके चेहरे पर बारिश हो रही है। उसने आंखें खोली, सबसे पहले एक मेहरबान बहुत प्यारा सा चेहरा नजर आया। ये चेहरा कितना प्यारा है। शमसा मुस्कुरा दी। शमसा बेटा, कुछ तो बोलो, अपनी माँ से कुछ तो कहो। माँ? शमसा के लबों पर जैसे ये लफ्ज बेसाख्ता आ गया हो। अम्मी? मेरी बेटी, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? रुकैया ने बेख्तियार उसको गले लगा लिया। शमसा को होश आ गया। पल भर में पूरा घर शमसा के बेड के चारों तरफ बैठ गया। शमसा बिल्कुल अजनबी नजरों से अपने इर्द गिर्द आशना से चेहरों को तक रही थी। किसी रिश्ते का कोई नाम उसके जहन में नहीं आ रहा था। सब कुछ ना कुछ बो रहे थे। कोई माथा चूम रहा था, कोई अपने आंसुओं की नमी से उसके हाथों को भिगो रहा था, मगर शमसा का चेहरा बिल्कुल स्पार था। हर जज्बे, हर एहसास से बेगाना चेहरा। उसके अपनों को कितना दुखी कर रहा था, वो इससे बेखबर थी। थोड़ी देर बाद फिर शमसा उसी तरह नींद बेहोश होकर गिर गई और सारे घर वाले एक बार फिर उसके होश में आने के लिए दुआएं करने लगे। अस्सलातु खैरुम मिन नूम। बहुत खूबसूरत आवाज में मौज़न खुदा की मखलूक को इबादत की दावत दे रहा था। बेखबरी की नींद से जगा रहा था। एक नया दिन और मोहलत मिल रही थी खुदा की बंदगी करने की। नमाज नींद से बेहतर है। उठो, भलाई की तरफ आओ, उठो, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। शमसा का खबेदा जहन बेदार हो रहा था। वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, मगर आंखें खुली हुई थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उसके चारों तरफ इस आवाज की रोशनी फैल रही थी। और इस रोशनी में एक ऐसी ताकत थी कि शमसा उठकर बैठ गई। वुजू करके अंदर आते हुए रुकैया ने देखा कि शमसा अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। एक पल को तो रुकैया को यकीन नहीं आया। आज पूरे 15 दिन बाद शमसा इस तरह उठकर बैठी थी, वरना वो बिस्तर पर एक जिंदा लाश की तरह बेहिस पड़ी रहती थी, जिसकी सांस भी बहुत मध्यम चलती थी। बल्कि कई बार तो रुकैया बकायदा शमसा की धड़कन सुनती तो उसके जिंदा होने का एहसास होता। शमसा, मेरी बेटी, मेरी जान, रुकैया ने मचल कर उसको सीने से लगा लिया। अम्मी, अम्मी जी, शमसा की आवाज बहुत कमजोर मगर बहुत साफ थी। अम्मी, मुझे क्या हुआ है? माँ का आंसुओं से धुला हुआ चेहरा देखकर शमसा बोली। फजर की नमाज के लिए जागा हुआ घर पल भर में शमसा के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। इतने दिनों बाद शमसा बोली थी, लगता था पूरे घर को जबान मिल गई हो। आंखों में खुशी और दिल में तशक्कल लिए हुए सारा घर शमसा को देख रहा था, जिसकी नजरों में हैरानगी थी, सवाल थे। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। यूसुफ ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसका माथा चूमा। मगर तुम अब बिल्कुल ठीक हो, नमाज का वक्त हो रहा है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, आके फिर बातें करेंगे। अब्बू जी, मैं भी मस्जिद जाऊंगा। इब्राहिम भी अपने बाप के साथ खुदा के घर में जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, जिसने उसकी आपी को सेहत बख्शी थी। अम्मी, मैं भी नमाज पढ़ूंगी, शमसा का दिल बोला। क्यों नहीं बेटा, मगर शायद तुमसे अभी उठा नहीं जाएगा। दिन चढ़ता है तो नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। सजीला बेटी, नमाज पढ़कर जल्दी से नाश्ता बनाओ, हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए रुकैया जाय नमाज पर खड़ी हो गई। जब यूसुफ मस्जिद से वापस आए तो पूरे घर में भी उसी तरह उजाला फैल गया था जिस तरह बाहर सूरज ने रोशनी कर दी थी। रहीला और सजीला ने मिलकर परांठे और अंडे बनाए थे, साथ ही दूध पत्ती वाली चाय भी तैयार कर दी थी। शमसा बड़े कमरे में थी, इसलिए सब वहीं उसके पास टेबल रखकर नाश्ता करने लगे। सबके दिल बहुत परेशान थे, मगर हर कोई एक दूसरे से अपना हाल छुपा रहा था। रुकैया छोटे छोटे नवाले बनाकर चाय में डुबोकर शमसा को खिलाने लगी। शमसा से कुछ भी खाया नहीं जा रहा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सब क्या है? कुछ याद नहीं, बस जैसे जहन बिल्कुल साफ सादे कागज की तरह हो। माँ को देखती तो माँ की आंखें भीगी हुई क्यों हैं? ये आंखें तो हमेशा रोशन और मुस्कुराती रहती थी। अब्बू के कंधे इतने झुके हुए क्यों हैं? उसका बाप तो उसका सहारा था, मान था, मगर अब अब्बा इतना कमजोर क्यों लग रहे हैं? दोनों बहनें इतनी परेशान और घबराई हुई क्यों हैं? और इब्राहिम की नजरें अपनी बहन के चेहरे पर क्या तलाश कर रही थी? वो तो खुद गुमगश्ता थी, वो किसी से क्या पूछती, किसी को क्या बताती? सब घर वाले खाम खा कुछ ना कुछ बोल रहे थे और वो उनके दरमियान बिल्कुल खामोश थी। तीन चार नवाले खाने के बाद उसने नफी में सर हिलाया। रुकैया ने नीम गर्म चाय का कप उससे होंठों के लगा दिया। दो तीन घोंट पीने के बाद उसने मुंह फेर लिया। उसको फिर बहुत थकन महसूस होने लगी। वहीं बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और आंखें बंद कर ली। वो फिर बेखबर हो गई। सारा घर बिल्कुल खामोश उसको देख रहा था, मगर उनके दरमियान चुपचाप पड़ी हुई थी। पता नहीं कितने दिन बीत गए। हर रोज वो कुछ देर के लिए आंखें खोलती, कभी माँ की तरफ देखती, कभी बाप की तरफ, और फिर साकत खलाओं में पता नहीं क्या क्या तलाश करती रहती। अब आहिस्ता आहिस्ता उसने होश संभाल लिया था, मगर अभी तक अपने बारे में कुछ ना पूछती और न बताती। यूसुफ साहब हर दूसरे रोज डॉक्टर लतीफ को ले आते। वो इनका बहुत अच्छा दोस्त था और बहुत माहिर डॉक्टर था। उसने शमसा को ए दो बार हॉस्पिटल में जाकर उसके सारे टेस्ट करवाए। टेस्ट में बहुत अजीब बातें पता चलीं। शमसा को तकरीबन एक हफ्ता बेहोशी की दवाई दी जाती रही है, मगर उसमें ग्लूकोज और विटामिन थे ताकि खुराक की कमी भी काफी हद तक पूरी होती रहे। इसके अलावा उसके जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशान नहीं थे और ना ही उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती की गई थी। रुकैया और यूसुफ अभी तक हैरान थे कि शमसा हॉस्टल से कहाँ चली गई थी, जबकि उसके अभी दो एग्जाम देने वाले थे और मेडिकल के फाइनल दो अहम एग्जाम के दौरान वो कहाँ रही। पूरे एक हफ्ते बाद रात के 3 बजे जब उनके घर की बेल बजाई गई वैसे भी घर में कौन सो रहा था? माँ बाप जिनकी जवान बेटी इस तरह गायब हो जाए, हर वक्त परेशान रहते थे और खुदा से दुआएं मांगते रहते थे। दरवाजे पर बेल होने पर बार बार पूछा गया मगर कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। वैसे भी लाहौर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, लोग रात को दरवाजा बंद करने के बाद सुबह ही खोलते थे। उस रात भी जब तकरीबन 3:30 बजे फजर की अजान हुई, तो वुजू करने के बाद यूसुफ साहब ने मस्जिद जाने के लिए दरवाजा खोला तो दरवाजे के आगे कोई गठरी सी पड़ी हुई थी। हल्की सी रोशनी में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उन्होंने गेट की बड़ी लाइट ऑन की तो लगा ये कोई इंसान है, शायद कोई लड़की है। फौरन किसी ख्याल के तहत उसको सीधा किया तो वो शमसा थी, बेहोश गेट के साथ टेक लगाकर रखी गई थी। यूसुफ ने भागकर रुकैया को बुलाया और दोनों ने मिलकर शमसा को अपने बाज में उठाकर अंदर ले गए। सारा घर पल भर में जाग गया। सब शमसा को देख रहे थे जो बिस्तर पर बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। शमसा का रंग हल्दी की तरह जर्द था, वो अपने ही लिबास में मलबूस थी मगर वो लिबास बेहद सिलवटों से भरा हुआ था, लगता था वो सोती रही है। और फिर वाकई डॉक्टर लतीफ ने भी आकर तस्दीक कर दी कि शमसा को मुसलसल बेहोशी के इंजेक्शन लगाए गए हैं। उसको किसी बंद कमरे या तहखाने में रखा गया था। उसके जिस्म पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था, ना ही कोई ज्यादती हुई थी और ना ही कोई तशद्दद की निशानी थी। शमसा के ब्लड टेस्ट से सब साफ हो गया कि उसको बेहोशी के इंजेक्शन लगाए गए थे, मगर कौन था और उससे शमसा की क्या दुश्मनी थी और इस तरह उसने शमसा को कैद करके क्यों रखा था? बज़ाहिर इसके अलावा कोई मकसद नज़र नहीं आता था कि शायद कोई गलत फहमी की वजह से इसको उठाकर ले गए थे और फिर खुद ही छोड़ गए, मगर वो कौन थे? ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद शमसा के पास होगा, मगर शमसा अभी तक कुछ बताने के काबिल नहीं लगती थी। 2-3 बार रुकैया ने आहिस्ता आहिस्ता पूछने की कोशिश की कि बेटी तुम कहाँ थी, तो शमसा बस खाली खाली नजरों से देखती रहती, कुछ सोचने की और बताने की कोशिश करती तो सर दुखने लगता, फिर वही बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट जाती। पूरे खानदान को शमसा की गुमशुदगी और वापसी का पता चल गया था। सियालकोट से सारे ददियाल वाले आए हुए थे। शमसा की हालत देखकर सबको बहुत दुख था। खानदान की इस कदर लायक लड़की इस तरह लाचार और मजबूर हालत में थी। हाजरा का ख्याल था किसी ने उसकी पोती पर जादू करवा दिया है। शमसा सबकी नजरों में थी, किसी की भी बुरी नजर लग सकती है। फूलों जैसी बच्ची, सूखे पत्ते जैसी हो गई है। शमसा को ज्यादा होश नहीं रहता था, बस चुपचाप बैठी रहती। फिर एक दिन अजरा उसको मिलने आई। अजरा शमसा को देखकर दहल गई। ये तो शमसा नहीं, जहानत से चमकती हुई आंखें, इस वक्त बिल्कुल स्पाट, मुस्कुराता हुआ चेहरा, इस कदर जर्द और उदास। अजरा शमसा को गले लगाकर रो पड़ी और फिर जारो कतार रोने लगी। शमसा तुम कहाँ चली गई थी? शमसा तुम कहाँ थी और तुमने इम्तहान क्यों नहीं दिया? शमसा तुमने इम्तहान नहीं दिया, तुम फेल हो गई हो। शमसा शमसा तुम फेल हो गई हो। अजरा बार बार ये लफ्ज बोल रही थी। तुम डॉक्टर नहीं बनी शमसा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम डॉक्टर नहीं बनी हो, तुम फेल हो गई हो। शमसा के चेहरे के तासुरात बदलने लगे, लगा उसको दुख हो रहा है। क्या इम्तहान हो गए? नहीं नहीं, अभी 2 इम्तहान होने वाले हैं और मुझे सब याद है, मैंने सब तैयारी कर ली है। शमसा आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी, नहीं शमसा नहीं, इम्तहान हो गए हैं और तुमने इम्तहान नहीं दिए। मैंने इम्तहान नहीं दिए? क्या, मैंने इम्तहान क्यों नहीं दिए? शमसा बहुत जोर से बोली, मैंने इम्तहान देना है, मैंने इम्तहान देना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने बहुत बड़ी डॉक्टर बनना है, मैं फेल नहीं हो सकती, मैं टॉप करूंगी, इस बार भी मैं टॉप करूंगी, तुम देखना इस बार भी मैं टॉप करूंगी। अब शमसा बाकायदा जोर जोर से बोलने लगी। सारा घर इकट्ठा हो गया। नहीं, मैं फेल नहीं हो सकती, मैं इम्तहान जरूर दूंगी। शमसा पर अजीब जुनून छा गया। शमसा तुम कहाँ चले गई थी? किसी को कुछ पता नहीं, तुम्हारा सेल फोन भी कमरे में था, मगर तुम गायब थी, तुम कहाँ थी? यही वो सवाल था जिसका जवाब कमरे में मौजूद शमसा के वालदेन समेत तो उसके बहन भाई भी जानना चाहते थे। वो रहील आया था, शमसा बोली। क्या? पूरा घर हैरान था। वो हॉस्टल में आया था, मुझे अपनी नई गाड़ी दिखाने के लिए हॉस्टल से बाहर ले गया और फिर एक्सीडेंट हो गया। मैं एक कमरे में अकेली थी, कोई नहीं था। मैंने सबको पुकारा, मैंने सबको आवाजें दी, मगर कोई नहीं आया, कोई नहीं आता था। मैं सबको बुलाती थी, शमसा बोलते बोलते जोर जोर से रोने लगी। रहील तो अमेरिका में है, रुकैया हैरान होकर बोली। शमसा बेटे, रहील तो पाकिस्तान में आया ही नहीं, वो तो अपनी नई फर्म में अमेरिका में है। बल्कि तुम्हारे इस तरह अचानक गायब होने पर रहील को जब पता चला तो हर रोज अमेरिका से फोन करता था। जिस दिन तुम लापता हुई थी हम साथ सारी रात परेशान रहे। तुम्हारे चचा को पता चला तो उन्होंने रहील को बताया। उस वक्त रहील अमेरिका में था। हमने तुम्हें नहीं बताया था, पिछले माह से ही उसको कंपनी ने अमेरिका में भेज दिया था। रुकैया ने पूरी तफसील के साथ शमसा को रहील के बारे में बताया। क्या रहील अमेरिका में था? तो फिर वो कौन था? शमसा की आवाज में हैरानगी थी। नहीं अम्मी, रहील आया था और मुझे हॉस्टल से लेकर गया था। अब तो रुकैया को वाकई शमसा की जहनी हालत पर शक होने लगा। सच कहते हैं, मेडिकल की इस कदर टफ पढ़ाई ने मेरे बेटे के हवास ही खत्म कर दी। इस आखिरी साल में वह जुनून की तरह मेहनत कर रही थी। बल्कि फाइनल एग्जाम से पहले शमसा ने कहा था कि वह इस बार सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पोजीशन के लिए तैयारी करेगी, चाहे उसको इसके लिए पागलों की तरह पढ़ना पड़े। और लगता है वाकई वो पागल हो गई। वरना रहील तो इतनी दूर अमेरिका में किस तरह वापस आ सकता है? वो खुद उनको रोज अमेरिका से फोन करता था और उनको तसल्ली देता था। और जब शमसा वापस आई उस दिन भी रहील का फोन आया था और वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि शमसा बिल्कुल खैरियत से वापस आ गई है। वो हर बार नॉर्मल अंदाज में पूछता रहा कि शमसा ठीक है, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। जब यूसुफ ने डॉक्टर की रिपोर्ट बताई तो उसने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, आप फिक्र नहीं करें, शमसा को कुछ नहीं हो सकता। शमसा के साथ हमारी दुआएं हैं, उसको कुछ नहीं होगा। अब सारे घर को लगता था वाकई रहील बहुत अच्छा इंसान है। उसी तरह मोहब्बत और इज्जत से वह शमसा का नाम लेता था। बल्कि दो तीन बार उसने इसरार भी किया था कि उसकी शमसा से बात करवाई जाए, मगर रुकैया ने शमसा की जहनी हालत देखकर बात टाल दी थी। रहील उसी तरह मुसलसल हर रोज फोन करता और उसकी खैरियत का मलूम करता रहता था। वही अमेरिका वाला उसकी कंपनी और उसके सेल फोन का नंबर होता था। माँ की बात सुनकर शमसा चुप हो गई। उसका वाकई दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या वो सब ख्वाब था? मगर उस कमरे में वो तनहाई का कर्ब, वो अजियतनाक दिन, वो सब क्या थे? और फिर उसको याद आ गया उसने इम्तहान नहीं दिए, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना। बल्कि उसको लगता था उसकी पढ़ाई ही उसकी जिंदगी है और पढ़ाई के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं। शऊर की मंजिल में जब पहला कदम रखा तो पढ़ाई का हाथ थाम कर कैसे बचपन गुजारा, कैसे जवानी के साथ चलते चलते शमसा को पता ही नहीं चला कि वो अपनी तालीम में इस कदर मगन थी कि कभी कभी उसको लगता सारी किताबें उसकी सहेलियां हैं, बहुत प्यारी सहेलियां जिनके साथ वो बहुत खुश रहती थी। उसने डॉक्टरी के अलावा कोई ख्वाब नहीं देखा था, बल्कि उसके पास इस पढ़ाई के अलावा और इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं थी। ये तालीम ही तो थी जिसने उसको وہ محبت اور عزت دی تھی کہ اس کے ماں باپ ہی نہیں پورا خاندان اس پر فخر کرتا تھا۔ اب شمسہ کی حالت عجیب ہو گئی تھی، یا تو سارا سا دن چپ رہتی یا پھر مسلسل روتی رہتی، جیسے اپنی محبت سے، اپنے خوابوں سے بچھڑ کر پتہ نہیں وہ کہاں رہ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ روتے روتے کئی بار وہ اس قدر شدت سے رونا شروع کر دیتی کہ سارا گھر پریشان ہو جاتا۔ روتے روتے وہ نڈھال ہو کر گر جاتی۔ ماں باپ سے اپنی بیٹی کا دکھ برداشت سے باہر تھا، مگر اس کا کوئی بھی حل ان کے پاس نہیں تھا۔ ڈاکٹر لطیف مسلسل اس کا علاج کر رہے تھے، مگر دواؤں سے جسمانی علاج ممکن ہوتا ہے، دوائی جسم پر اثر کرتی ہے، مگر شمسہ کا ذہن اس قدر پریشان تھا کہ دوائی بھی بے اثر ہو جاتی۔ شمسہ کو کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے ہوش آتا جب وہ ساری باتیں سوچتی کہ یہ سب کیا تھا۔ اس نے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ رحیل اس کو ہاسٹل سے لے کر گیا تھا، مگر یہ گتھی سلجھتی نہیں تھی اور وہ سوچ سوچ کر تھک جاتی۔ کبھی کبھی اپنے ماحول سے بیگانہ ہو جاتی اور کبھی سب کو چپ چاپ تکتی رہتی۔ اس رات اس کو لگا کوئی رو رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کی ماں جائے نماز پر تھی اور سجدے میں خدا سے اپنی بیٹی کی صحت اور خوشیاں مانگ رہی تھی۔ اے میرے رب، میری اس بیٹی کو تو نے اس وقت بھی عزت دی تھی جب یہ پیدا ہوئی تھی، تو اس کی دادی نے خوش ہونے کے بجائے اس کے بیٹی ہونے اور گورے نہ ہونے پر کتنی باتیں سنائی تھی، مگر میرے رب، تو نے میری بیٹی کی تقدیر میں ایسی خوش نصیبی لکھ دی کہ وہی بیٹی اسی دن کیسی نصیبوں والی کہلائی گئی، باپ کے لیے برکت والے رزق کی خوشخبری بن گئی۔ میرے مالک، میری بیٹی کو آج پھر تیری اسی رحمت کی ضرورت ہے۔ میرے مالک، آج پھر میری بیٹی کو سرخرو کر دے۔ میرے اللہ، میری بچی کی زندگی خوشیاں اور رحمتوں سے زندگی بھر دے۔ رقیہ جائے نماز پر سجدے کی حالت میں اپنے خدا سے اپنی بیٹی کی صحت و تندرستی مانگ رہی تھی۔ شمسہ چپ چاپ ساکت اپنے بستر پر یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے لیے سنیے اگلی قسط۔ میں خوش نصیب ہوں۔